ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक अहम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये विचार उनके उद्बोधन लोक सेवा की प्रवृत्तियों के केंद्र हूं मंदिर से आता है। और सवाल ये उठता है कि क्या मंदिर बस मतलब पूजा पाठ घंटे घड़ियाल तक ही रह जाने चाहिए या फिर वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की जो कल्पना थी वो तो ऐसे मंदिरों की थी जो अपने आप में एक पूरा परिसर हो, मतलब देवालय तो हो ही, वो तो है ही, पर साथ में पाठशाला भी हो।
हाँ।
और खास तौर पर प्रौढ़ों के लिए भी कुछ सीखने की जगह हो, संगीत विद्यालय हो, ज्ञान बढ़ाने के लिए वाचनालय जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं,
बिल्कुल,
कथा प्रवचन के लिए एक अलग कमरा, फिर सेहत के लिए व्यायामशाला, एक छोटा मोटा चिकित्सालय और यहाँ तक कि बच्चों के खेलने की जगह भी। यानी एक ही जगह पर समाज की भलाई लोक मंगल से जुड़ी ढेरों गतिविधियां।
सही कहा, ये तो मंदिरों की एक बिल्कुल ही अलग एक बहुत व्यापक तस्वीर है जो गुरुदेव ने खींची थी।
हाँ बिल्कुल।
और इसी नजरिए से देखते हुए पूज्य गुरुदेव ने उस समय की जो स्थिति थी मंदिरों की और जो शायद आज भी काफी हद तक वैसी ही है, उस पर कुछ कह सकते हैं तीखी टिप्पणियां भी की।
अच्छा, क्या कहा उन्होंने?
उनका मानना था कि भई दुर्भाग्य से कई जगहों पर मंदिरों का जो इतना सारा धन है, संपत्ति है, वो कुछ स्वार्थी लोगों के हाथों में पड़कर, जिन्हें हम शायद मठाधीश या महंत कह सकते हैं,
हाँ, जो प्रमुख होते हैं मंदिरों के,
उनके अपने निजी हितों में या उनके भोग विलास में खर्च हो रहा है। और इसका नतीजा ये होता है कि जो जगह श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होनी चाहिए थी, वो कई बार बिल्कुल उल्टा, मतलब समाज में गलत धारणाएं फैलाने या अज्ञान का केंद्र बन जाती है। उन्होंने इसकी तुलना के लिए गिरजाघरों का उदाहरण भी दिया था। जैसे हम देखते हैं कि चर्च के साथ अक्सर अस्पताल होते हैं, स्कूल होते हैं, समाज सेवा के दूसरे काम जुड़े रहते हैं।
ये बात तो है। तो ये सिर्फ धन के सही उपयोग की ही बात नहीं थी, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मंदिरों के अंदर जो कुछ रीतियां चलती हैं उन पर भी शायद कुछ सवाल उठाए थे, जैसे कि कर्मकांड।
हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पूज्य गुरुदेव ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि कई बार हम कर्म कांडों पर जरूरत से ज्यादा ही जोर देने लगते हैं।
जैसे कि?
जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि ये जो भगवान को सुलाना, जगाना या उन्हें पंखा झलना, इन सब कामों के लिए 2400 घंटे पुजारी की जरूरत क्यों मानी जाए, जबकि ईश्वर की ही बनाई हुई शक्तियां हैं, सूरज है, हवा है, ये तो कभी नहीं सोती, कभी आराम नहीं करती।
बात तो सही है।
उनका मतलब ये नहीं था कि भाई भक्ति मत करो या प्रतीक पूजा गलत है, नहीं, लेकिन उनका कहना था कि मंदिरों के जो सीमित साधन है, पैसा है, लोगों की मेहनत है, समय है, इनका बड़ा हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा इन प्रतीकात्मक चीजों के बजाय असल लोकमंगल में लगना चाहिए, मतलब समाज की ठोस सेवा में।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर ऐसी कमियां थीं, तो उन्होंने सुधार का रास्ता क्या बताया?
देखिए, समाधान के लिए उन्होंने कई स्तरों पर बदलाव की बात की। पहली चीज तो ये कि मंदिरों की जो ट्रस्टी हैं, जो प्रबंधक हैं, उन्हें ये साफ साफ समझना होगा और मानना होगा कि भाई ये मंदिर की जो संपत्ति है, ये समाज की है, जनता की अमानत है।
हाँ, वो मालिक नहीं है।
बिल्कुल, वो सिर्फ उसके प्रबंधक हैं, देखभाल करने वाले हैं। दूसरी तरफ आम जनता को भी जागरूक होना होगा, उन्हें समझना होगा कि ये उनका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी कि वो मंदिर के धन का गलत इस्तेमाल और अपनी श्रद्धा का दुरुपयोग होने से रोकें।
और पुजारी, उनके बारे में क्या कहा?
हाँ, तीसरी और बहुत अहम बात पुजारियों के बारे में कि उनका काम सिर्फ मूर्ति पूजा तक ही सीमित ना रहे, वो असल में समाज के सेवक बने, लोक सेवक। पूजा का जो उनका तय समय है, उसके बाद का बाकी समय वो समाज के भले के कामों में लगाएं।
और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए ही शायद उन्होंने प्रगतिशील मंदिरों की बात की होगी और गायत्री तपोभूमि का उदाहरण दिया होगा।
हाँ बिल्कुल, गायत्री तपोभूमि हरिद्वार को उन्होंने इसी सोच के एक मॉडल, एक नमूने के तौर पर विकसित करने की कोशिश की, जहाँ पूजा आराधना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, समाज सुधार, ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ चलती हैं।
और जरा सोचिए, इस विचार का पैमाना कितना बड़ा हो सकता है। एक अनुमान बताते हैं कि देश में करीब 6 लाख मंदिर हैं।
जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या है ये।
और इनमें खरबों रुपए की संपत्ति लगी है और करीब 12 लाख लोग सीधे या परोक्ष रूप से इन मंदिरों से जुड़े हुए हैं। अगर इतनी बड़ी जनशक्ति और संपत्ति का सही दिशा में
रचनात्मक कामों में उपयोग हो।
तो सोचिए जरा, ये देश के पुनर्निर्माण में कितना बड़ा योगदान दे सकता है। शायद किसी भी सरकारी योजना से ज्यादा प्रभावी हो सकता है ये।
हाँ, क्योंकि ये लोगों की श्रद्धा से जुड़ा है।
बिल्कुल। तो ये रचनात्मक गतिविधियाँ क्या हो सकती हैं मंदिरों में?
हाँ, क्या क्या किया जा सकता है?
पूज्य गुरुदेव ने इसकी पूरी रूपरेखा दी। जैसे प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं चला सकते हैं, खासकर स्त्रियों नारियों के लिए दोपहर के समय, जब उन्हें अक्सर थोड़ी फुर्सत मिल जाती है।
अच्छा विचार है।
फिर अच्छे प्रेरणा देने वाले साहित्य वाली लाइब्रेरी वाचनालय खोले जा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार सिखाने के केंद्र बन सकते हैं। सरल प्राकृतिक चिकित्सा की सलाह देने की व्यवस्था हो सकती है।
युवाओं के लिए भी कुछ?
हाँ, युवाओं को जोड़ने के लिए व्यायाम शालाएं और कम से कम बुनियादी प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड की व्यवस्था तो हर मंदिर में हो ही सकती है। देखिए, सरकारें कानून बना सकती हैं, ढांचा खड़ा कर सकती हैं, लेकिन लोगों के मन को बदलना, उनमें अच्छी आदतें डालना, नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक चेतना जगाना,
हाँ, वो अंदर से बदलाव लाना,
जी, वो काम धर्म तंत्र के माध्यम से ज्यादा असरदार तरीके से हो सकता है। लोगों के अंदर जो भाग्यवाद है, आलस्य है, स्वार्थ है, इन नकारात्मक चीजों को हटाकर अच्छी आदतें, सद्वृत्तियां जगाने में मंदिर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो श्रद्धा के केंद्र हैं।
सही कहा। अच्छा, एक सवाल और उठता है, कई लोग मूर्ति पूजा को सही नहीं मानते या उसका विरोध करते हैं, उनके लिए पूजनीय गुरुदेव का क्या कहना था? क्या वो मंदिरों को अप्रासंगिक मानते थे ऐसे लोगों के लिए?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि जो लोग मूर्ति पूजा से सहमत नहीं भी हैं, उन्हें भी इन बने बनाए श्रद्धा के केंद्रों को यानी मंदिरों को तोड़ने या उनकी बुराई करने की जरूरत नहीं है।
तो क्या करें?
अरे भाई, एक बनी बनाई इमारत है, लोगों के मन में उसका एक स्थान है, उसे गिरा कर कुछ नया बनाने से तो कहीं अच्छा है कि उसकी दिशा सुधार दो, उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करो।
हाँ, ऊर्जा को सही दिशा देना।
बिल्कुल, ऊर्जा को नष्ट क्यों करना, उसे सही दिशा देना ज्यादा समझदारी है, ज्यादा रचनात्मक है।
स्पष्ट है। तो कुल मिलाकर पूज्य गुरुदेव का आवाहन यही था कि मंदिर अपनी असली भावना को समझें, जो हमेशा से लोक कल्याण की ही रही है, और सिर्फ पूजा पाठ के स्थान बनकर न रह जाएं, बल्कि समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, इन सबके जीवंत और शक्तिशाली केंद्र बने।
हाँ, एक तरह से अपनी खोई हुई आत्मा को फिर से पाना।
बिल्कुल।
तो इसी विचार के साथ हम सबके एक सोचने वाला प्रश्न छोड़ जाते हैं, जो पूज्य गुरुदेव के विचारों से ही निकला है। उनके अनुसार अगर मंदिर सच में समाज सेवा के केंद्र बन जाए तो शायद यही सच्ची पूजा होगी जिससे ईश्वर सबसे ज्यादा खुश होंगे। तो क्यों ना हम सब ये सोचें कि आज हम अपने आसपास के मंदिरों को इस ऊंचे आदर्श के, इस महान लक्ष्य के थोड़ा और करीब लाने के लिए कौन से छोटे या बड़े कदम उठा सकते हैं, इस पर विचार करना जरूरी है। ओम शांति।